Elhamdülillahi ve kafa. Ve selamun ala ibadihi allazihi yastafa. Amma ba'd. Fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alâ inne evliyâ Allahi la havfun aleyhim. Ve la hum yahzanun. Allezine amenu ve kânu yettekûn. Ve kâle Allah Teâlâ fî mekâmin âhir. İnne evliyâuhu illel muttekûn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti emmâ yasifûn. Ve selâmun alel mursalîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin ve bârik ve sellem. Abhi jo ayet padi gayi, isme kaha gaya, announcement ke saath, alâ inna awliyâ Allah, jo Allah ke bande hote hain, wali hote hain, jinko Allah apne doston ki فہرست میں لکھتا ہے اکاؤنٹ میں لکھے جاتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا یحبہم ویحبونہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد چند ایک نہیں ہے بے شمار لوگ ہیں یہ بالکل یوں سمجھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اگر قیامت تک تمام لوگوں کی لسٹ بنائی جائے اور اس کے بعد اگر اکاؤنٹس کیا جائے تو آپ کو عجیب ایک فگرز آپ کے سامنے آئیں گی وہ کیا ہوں گی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا کچھ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے اسی طرح نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی بات کو مان لیا نبی کے فالو کیا اور جن لوگوں نے فالو نہیں کیا ان کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا اچھا پھر اسی طرح قوم عاد ہے قوم سمود ہے قوم لوط ہے اگر آپ اسی طرح سے ٹائم ٹو ٹائم 124,000 انبیاء تشریف لائے تو ہر کچھ عرصے کے بعد مختلف علاقوں میں جب نبی تشریف لاتے تھے تو رزلٹ کیا نکلتا تھا رزلٹ یہ نکلتا تھا کہ کچھ لوگوں کو تو ایمان مل جاتا تھا اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دیتے تھے کانسٹنٹلی ایسے ہوتا آیا ہے یوں سمجھے کہ گارڈنر ہے اس نے پلانٹس لگائے لیکن سم ہاؤ وہاں پر دوسری شربز بھی نکل آئیں اور دوسرے پلانٹس نکل آئے انوانٹیڈ اب وہ کیا کرتا ہے ٹائم ٹو ٹائم جو انوانٹیڈ ہوتے ہیں ان کو ریموو کرتا رہتا ہے تاکہ اس کا گارڈن صحیح رہے اگر وہ ریموو کرنا بند کر دے تو کیا ہوگا سب طرف گندے پلانٹس نکل آئیں گے نیچرل بات ہے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کانسٹنٹلی ایسا ہوتا رہا کہ جب بھی گندے پلانٹس نکل آتے تھے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے تھے ان کو ریمو کر دیتے تھے اب جو صحیح پلانٹس ہوتے تھے ان کی سیڈنگ ہوتی تھی پھر اگر آج کی لینگویج میں ہم بولیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ گندے جینیٹکس کو کانسٹنٹلی ڈسٹروائے کرتے رہے اگر وہ گندا جینیٹک چلتا رہتا جو حضرت نوح علیہ السلام نے فگر آؤٹ کر لیا تھا کس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت تبلیغ کی آل آف سڈن ان کا مائنڈ کیوں چینج ہو گیا انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں وہی سٹارٹ سیئنگ کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے کسی کافر کا گھر چھوڑنا ہی نہ सबको डिस्ट्रॉय कर देना, न सिर्फ ये बल्कि इनके आगे जो बच्चे आएंगे वो भी ठीक होने के काबिल नहीं होंगे। नूले साहब को ये बात कैसे पता चल गई थी? इसलिए कि उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि ऐसा जेनेटिक क्रिएट हो चुका है जो अल्लाह की इबादत अब नहीं करेगा, खत्म। लिहाजा नूह अलैहि सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह सारा ये जितना भी ये गंदा जेनेटिक है ना, इसको चेंज कर, खत्म कर दे। आज साइंस जो है इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि भाई क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के अंदर ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, बिहेवियरल जीन्स होती हैं, और इस पे आजकल काम हो रहा है कि आप वो जो रिलीजन वाली जेनेटिक्स है ना उसको तो डिलीट ही कर दें। वो समझते हैं, कई लोगों के ये थॉट्स हैं कि ये जो जेनेटिक्स है ये हिंड्रेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर और प्रोग्रेशन के अंदर, हिंड्रेंस है, क्योंकि आदमी जो है रिलीजियस हो जाता है और वो कंजर्वेटिव किस्म की लाइफ गुजारता है, तो लिहाजा वो इस बात के लिए अपने जो सेंसिटिव उनके एरियाज हैं उनमें लोगों को ट्रेन करते हैं कि चाहे बगैर कपड़ों के तुम्हें जाना पड़े बाथरूम्स में और आना पड़े और इस किस्म की तुम्हें शर्म ना आए, यानी जो शर्म है ना, जो पार्ट शर्म जिसको हया कहते हैं हमारी जुबान में, वो जीन्स को ही खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे जेनेटिक बैंक बनाए जा रहे हैं कि जिनकी जीन मैनिपुलेशन करके वो इसको डिलीट कर देंगे अगर, और फिर लोग अपनी चॉइस की वहां से जेनेटिक्स लेंगे और वो जो बच्चे पैदा होंगे आप बताएं कि उनके बारे में फिर क्या फतवा दिया जाएगा, कि जिनके अंदर रिलीजन्स की जीन ही नहीं अब, तो वो सवाए डिस्ट्रॉय होने के तो बाकी तो कुछ भी नहीं है ना। तो ग्रेजुअली कम्युनिटी के अंदर ये चेंजेस आती हैं। आपने PIG का इस्तेमाल किया, आपने अल्कोहल ड्रिंक की, आपने इंटरनेट के गंदी तस्वीरें देखी। अब क्या होता है कि मियां बीवी आपस में मिल रहे होते हैं और कमरे में टीवी भी लगा होता है, इंटरनेट भी लगाए होते हैं आजकल, और इस हालत में वो आपस में मियां बीवी मिलते हैं, दुआ मांगना तो भूल ही जाते हैं, वो तो गंदगी देख रहे हैं। तो कहा कि शयातीन उनके ऑर्गन्स के साथ लिपट जाते हैं और उनके साथ उनकी बीवी से जिना करते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी अजीब बात है। अब इस जेनेटिक्स के अंदर चेंजेस आएंगी कि नहीं आएंगी? सिर्फ एज एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको रियल नहीं समझना। अगर हम ये देखें कि जो जिन होते हैं, शयातीन जिन होते हैं, ये आग से बने हुए हैं। अच्छा, अगर हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जिन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बने हुए हैं, आप बिजली के अंदर फायर होती है ना। अच्छा, अब आप ये देखें कि जिस वक्त हस्बैंड एंड वाइफ मिलते हैं उस वक्त जेनेटिक्स उनका ओपन होता है, मैक्सिमम ओपनिंग होती है उस टाइम। अगर आप उस टाइम रेडिएशन दे देंगे उसके ऊपर तो क्या होगा, जीन मैनिपुलेशन हो जाएगी ना। एग्जैक्टली यही कुछ जेनेटिक बैंक में कर रहे हैं ना बैठकर, कि वो उन जीन्स को उस तरीके उस वक्त ओपन करके उसको ट्रीट करते हैं और वो चेंज कर देते हैं जीन्स को। तो अगर उस टाइम शयातीन इंसान के साथ लिपट कर वो रेडिएशन दे दें, नाउ मेक सेंस है ना, समझ में आ गई ना। थ्योरेटिकल मैंने हाइपोथेसिस है, इट्स नॉट ट्रू। कल को आप जाके नरेट करेंगे शेख कुरैशी ने ये बताया जिन्हों के बारे में, तो वो मेरी तरफ से ये बात नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये बात की है कि ताकि बात समझ में आ जाए। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इस्लाम की बातें साइंस के साथ समझ में आ जाती हैं, साइंस की एग्जाम्पल से, क्योंकि हमारा आजकल जो ये एरा चल रहा है ये बहुत साइंटिफिक एरा है, इसमें साइंस की बहुत ज्यादा इन्वेंशन हो चुकी हैं, तो इसलिए हमारी डेली लाइफ में ये चीजें आ चुकी हैं, तो इसलिए ये बात एग्जाम्पल के तौर पर समझा दी कि अगर हम ऐसा फर्ज कर लें तो बात समझ में आ जाती है। नूह अलैहि सलाम ने फिगर आउट कर लिया कि ये जेनेटिक चेंज हो चुका है ये ठीक नहीं होते। अच्छा, इसी तरह टाइम टू टाइम ऐसा होता चला गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کے تشریف لے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو چھوڑ کے گئے، 124,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اصحابی کل نجوم، یہ سپارکلنگ سٹارز ہیں، میرے صحابی سپارکلنگ سٹار ہیں، ایسے لوگ نہ پہلے تھے نہ آئندہ کبھی آئیں گے۔ یعنی ایسا پیور کیا گیا ان کو کہ وہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ امپیورٹیز شروع ہو گئیں۔ آج ہم جس ٹائم پہ وقت گزار رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کتنی امپیورٹیز ہیں اس وقت، کتنا ریلیجن کے لیے اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس سب چیز کے باوجود جو میں بات بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست کہا جاتا ہے، اللہ خود بھی ان کو اپنا دوست کہتا ہے، وہ بھی اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تابع داری کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین آمنوا، آگے آیت کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں میں نے یہاں تک پڑھا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، فکر نہ کرو جو میرے دوست ہوں گے ہے نا، ان کے اوپر کوئی خوف ہی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کتنے خوف ہمارے پاس ہیں، ہے نا۔ اچھا، خوف عام طور پر ایکسٹرنل ہوتا ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے بندہ جو ہے فیئر فل ہو جاتا ہے، خوف اسی کو کہتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایکسٹرنل فیئر فلنیس نہیں ہوگی، ایسے اندر سے کام ڈاؤن ہو چکے ہوں گے۔ اور آگے بتایا ولا هم يحزنون، اور ان کو ڈپریشن بھی نہیں ہوگی۔ حزن کہتے ہیں انٹرنل فیئر کو، اور انٹرنل فیئر کیا ہوتا ہے، بندے کو ڈپریس کر دیتا ہے۔ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے سکیرینس ہو جانا، یا انسان کے اپنے اندر سکیرینس ہو جاتی ہے، آپ ڈارک روم میں جائیں گے آپ کو انٹرنل فیئر فل ہوگا، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں شاید مجھے چوٹ لگ جائے، پتہ نہیں یہاں پر کوئی چیز ایسی نہ ہو، کوئی چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈارکنیس میں بھاگ کے گزرتے ہیں وہاں سے کہ پتہ نہیں کوئی چیز نہ ہو۔ اب یہ حالانکہ وہاں ہوتی کچھ نہیں ہے، آپ لائٹ آن کر دیں تو وہ ان کو ہر چیز نظر آنے لگ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، اب وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو یا بندے کو ایکسٹرنل فیئر ہوتا ہے، یا بندے انٹرنل جو ہے حزن کی وجہ سے ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے فیئر فل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو اولیاء اللہ ہوں گے، نہ ان کو ایکسٹرنل فیئر فلنس ہوگی اور نہ انٹرنل ڈپریشن ہوگی۔ آپ سوچیں اگر ہمیں یہ نعمت مل جائے، ہماری زندگی کے اندر کتنی بڑی چینج آ جائے گی کہ ہمیں باہر کا ایکسٹرنل فیئر نہ ہو، ہمیں اپنے اندر سے ڈپریشن نہ ہو، کتنے ہم کام ڈاؤن ہو جائیں گے، کتنے مزے کی لائف ہو جائے گی۔ صرف اسی بات سے آپ اندازہ کریں۔ اچھا، اب یہ لوگ کون ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیں گے؟ اللہ خود آگے فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے کر آئے، مرد بھی عورتیں بھی، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان ایک عجیب چیز ہے، یہ بلیو ہے، اندر کا یقین ایمان کہلاتا ہے۔ ہمارے شیخ بہت پیاری مثال دیتے ہیں کہ بھئی ایمان کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایمان جو ہے بغیر دیکھے یقین کر لینے کو کہتے ہیں، ٹرسٹ کرنے کو کہتے ہیں ایمان۔ کیا مطلب؟ اگر فرض کیا ایک آدمی ہے، وہ کسی کانٹریکٹ کے لیے آ کے بیٹھا ہے ٹیبل پر، گھر بیچتے ہیں، ہے نا، تو اب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے جی ہم چاہتے ہیں کہ بھئی گھر بیچنا ہے، دوسرا آدمی کہے گا ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں آپس میں، بھئی اتنے کا گھر ہے، نہیں نہیں اتنے نہیں، اتنا کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ تو اب جب فائنل نیگوشیشن ہو جائے گی تو وہ بندہ کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، ڈن، ڈیل از ڈن، میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، آپ مجھے گھر دے دیں۔ اب وہ کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے، جو کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے اس کے دل میں یہ یقین اگر نہ ہو کہ یہ بائی بھی کر سکتا ہے نا، از اے گڈ بائر اور ناٹ، تو آپ مجھے بتائیں وہ کانٹریکٹ سائن کرے گا اسے؟ تو اس کو ایک اس کی ڈیلنگ کے ساتھ एक फीलिंग डेवलप हो जाती है कि ही इज ए गुड बायर एंड ही कैन पे मनी। या आप इसको यूं समझिए कि आप कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए चले गए, उन्होंने कहा जी हम आपको 100,000 देंगे। अब अगर कंपनी ऐसी हो, आप असेस करेंगे, वहां जाके देखेंगे, आप कहेंगे यार 100,000 इनके पास तो होगा ही नहीं, ये मुझे कह तो रहे 100,000 दे देंगे, हाँ मैं जो है ऑलरेडी 80,000-85,000 ले रहा हूं, तो शुड आई साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, है ना। तो अगर आप वहां गए, आपने उस कंपनी की एक लुक को देखा, फील किया, आपने कहा कि भाई लुक्स लाइक ह्यूज कंपनी, तो अगर ये 100,000 कह रहा है, और उसके साथ ही जब आप रेडी हो गए साइन करने के लिए, तो उसने कहा वी गोना वॉच यू फॉर 3 मंथ्स एंड देन वी गोना गिव यू रेस। अब ये लिखा हुआ नहीं है, वर्बल बात उसने कर दी। अच्छा, आप इस पे भी ट्रस्ट कर जाते हैं कि भाई ये जिस सीट पर बैठ के इस बंदे ने बात की है, ही इज अ डायरेक्टर एंड ही इज गिविंग मी हिंट। आप 3 महीने एफर्ट करते हैं, प्रूव करते हैं अपने आप को इस यकीन के साथ कि ही विल पे मी एक्स्ट्रा, और 3 महीने के बाद आपको मिल जाता है। ये जो यकीन है ना आपके अंदर, ये यकीन ईमान कहलाता है। आप उस बंदे की बात पर ईमान ले आए हैं, आपने उसकी बात को मान लिया, है ना। अब अल्लाह ताला पर ईमान लाना, अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई तुम मेरे आसमान को देखो, मेरी फैक्ट्री देखो जो मैंने बनाई है, वही मेरे सितारों को देखो कैसे चमकते हैं, रोजाना मैं सूरज निकाल के दिखाता हूं, इसको देखो कैसे निकलता है, और फिर चांद निकलता है, फिर जमीन से कैसे मैं पौधे उगाता हूं, कैसे बड़े हो जाते हैं, तुम इनको देखो, तुम खुद अपने आप को देखो कि मैंने तुम्हें कैसे बनाया था, तुम्हें ताकत दी, तुम्हें बूढ़ा कर दिया और फिर इस दुनिया से तुम्हारे बड़ों को उठा लिया, मैं बनाने वाला हूं, क्रिएटर हूं, और मैं फिर उसके बाद मौत भी देने वाला हूं, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट ऑन मी, व्हाई डोंट यू बिलीव ऑन मी। तुम्हें ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही, अब इसके पास जरूर है कि मैंने तुम्हें पैसे निकाल के दिखाने कि आई हैव 100,000 आई विल पे यू डोंट वरी। या आप जब जा पर जाते हैं तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाती है कि जनाब ये हमारी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है, यस वी कैन पे यू। या आप वैसे उस पर यकीन लेकर आ जाते हैं, यस यस ही गोना पे अस। अब अल्लाह ताला को खुद आकर आपको दिखाना, या जन्नत दिखाना, या जहन्नम दिखाना, या फरिश्तों को जाहिर करके दिखाना जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट लुक द होल कंपनी एंड देन रियलाइज। इसको ईमान कहते हैं। अब ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। और ये ईमान इतना पक्का होना चाहिए कि इसमें कोई भी डाउट्स नहीं आने चाहिए कि भाई अल्लाह ताला वाकई, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जहन्नम बनाई है, अल्लाह अजाब भी दे सकते हैं, अल्लाह ताला सब चीज कर सकते हैं, है ना। तो ये यकीन दिल में पैदा हो जाए, इसका नाम है الذين آمنوا, वो लोग जो ईमान ले आए, है ना। अब औलिया अल्लाह की तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि पहले आयत के अंदर औलिया अल्लाह की बात है। आगे पता क्या लिखा हुआ है, वकानू यत्तकून। ईमान लाना एक शर्त अल्लाह के दोस्त बनने के लिए, और दूसरी शर्त क्या है, वकानू यत्तकून, तकवे की जिंदगी गुजारना। तकवा किसे कहते हैं, हिफाजत की जिंदगी, केयरफुल लाइफ, है ना। ये नहीं है कि तुम्हारा ईमान तो है भाई अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ताला मौत भी देंगे, अल्लाह की जन्नत भी है, जहन्नम भी है, और उसके बाद अल्लाह ने पूरा इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस भेज दी कि भाई ये हलाल है, ये खाना है, ये हराम है, ये मत खाना, इसमें नुकसान है जी, तुम्हारा अपना नुकसान है, है जी? तुम खाओगे तुम्हारा नुकसान होगा, भाई पी आई जी खाएंगे किसका नुकसान होगा, बंदे का अपना नुकसान होगा। तो तुम ड्रिंक करोगे, अल्कोहल पियोगे, तुम्हारा नुकसान होगा. तुम ड्रग अब्यूज करोगे, तुम्हारा नुकसान होगा. इट्स एवरीथिंग इज इंजूरियस टू योर लाइफ और नॉट ओनली योर बॉडी, तुम्हारी सोल को भी डैमेज कर देगा. और जब सोल डैमेज हो जाएगी, तुम इबादत ही नहीं कर सकोगे अल्लाह ताला की. तुम्हारे ईमान लाने का क्या फायदा कि उसके बाद तुम जो है अपनी सोल डैमेज कर बैठे. तो इसलिए अच्छा, इसी तरह भाई आंखों से तुमने किसी नामहरम को नहीं देखना, कानों से तुमने खाम खा म्यूजिक नहीं सुनने, क्योंकि ये सुनोगे तुम्हारा नफ्स बढ़ेगा. तुम्हें कहां से वो रोकेगा? अल्लाह की इबादत से रोक देगा, डिस्टेंट करता चला जाएगा अल्लाह ताला से, तुम्हारा नफ्स बढ़ता जाएगा. जितना इस्लामिक लाइफ है, सॉरी को आप बैठ के सोचते चले जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा इट इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी एंड फॉर आवर सोल. तो अब जो है, और दूसरा यह है कि ये गुनाह जो होते हैं ना, ये फिल्थी होते हैं. जितने भी गुनाह के काम है, ये फिल्थी होते हैं, डर्टी होते हैं. इसकी वजह से जिस ऑर्गन से आदमी गुनाह करता है, वहां बैड स्मेल क्रिएट हो जाती है. फरिश्तों को वो फील होती है, वो आके सूंघते हैं बंदे को, उनको उनकी कंपनी अच्छी नहीं लगती. जो बंदे नेक होते हैं, इनकी कंपनी में फरिश्तों को एक गुड फ्रेग्रेंस फील होता है, अच्छी स्मेल आती है. फरिश्ते ऑल टाइम उनके सराउंड करते हैं उनको, क्योंकि उनको मजा आ रहा होता है. अल्लाह ताला ने दुनिया के में फरिश्ते भेजे हुए हैं. इसी तरह जैसे जैसे आप इबादत करते चले जाएंगे, माशाल्लाह आपके पास फरिश्ते बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे. वो मुझे राहिल भाई ने कहा था मुझे बयान सुना देना, आप अगर उसको लिंक कर दें, बेचारे इंतजार में होंगे. वो छोड़ दें, ये इनके पास है, उनको दे देंगे, वो बिजी रहेंगे बच्चे. नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ऐसे रख लें बस, यहाँ पर आवाज चली जाएगी, उनको बुला के यहाँ रख लें. बोले ना बीच में, हम स्पीकर ऑन कर रहे हैं, आप बोलिए ना बीच में, खामोश साइलेंस रखिएगा. जी, तो बात चल रही थी कि इंसान के नेक अमाल से उनमें अच्छी स्मेल पैदा होती है. अच्छा, आम हमें कैसे पता चलेगा, है ना? हमें भी तो पता चलना चाहिए ना. इसका पता आम करने का तरीका यह है, आप अगर किसी गुनहगार बंदे के पास बैठेंगे ना, तो आपको वहां पर एक इरिटेटेड और अनकंफर्टेबलनेस फील होगी, डिस्टर्ब कंपनी फील होगी. और अगर आप किसी अल्लाह वाले के पास बैठेंगे, तो आपको पीसफुलनेस फील होगी, क्योंकि उसके पास फरिश्ते होते हैं. इस वजह से आप जितनी देर उस कंपनी में बैठेंगे ना, आपको ऐसे लगेगा सुकून आ रहा है, पीसफुल आ रहा है, इत्मीनान हो रहा है. अब द मोमेंट यू गेट अवे फ्रॉम हिम, तो आप जैसे किसी कमरे में बैठे हुए हैं, आप सड़क तक ही चले गए, आपको फीलिंग होगी कि यार वो जो एक फीलिंग्स थी ना, जो मेरी एक मजा मजा सा एक अजीब एक कंफर्ट आ रही थी, वो खत्म हो गई है, आप नोटिस करेंगे. अच्छा, इसी तरह आप मस्जिद में तशरीफ ले जाएं, आप जैसे ही मस्जिद में दाखिल होंगे, आप जितनी देर मस्जिद में रहेंगे, आपको फीलिंग होगी पीसफुलनेस. अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां गुनाह हो रहे हैं, कोई बंदा किसी क्लब में चला गया, जैसे वहां एंटर होगा उसको फीलिंग होगी जैसे एक अजीब डिस्टर्बेंस ही है, और जैसे वो टर्मोइल सिचुएशन नहीं होती, डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, लेकिन ये होता है कि इंसान जिस एनवायरनमेंट में रहता है ना उसका यूज्ड टू हो जाता है। अगर शोर मचा हुआ है आप वहां बैठे रहे, शुरू शुरू में आप नोटिस करेंगे कि शोर हो रहा है, लेकिन अब बाद लोगों का घर होता है ट्रेन के बिल्कुल करीब होता है, हर कुछ देर बाद ट्रेन गुजरती है चक चक चक चक करती हुई, आप शुरू शुरू में जाएंगे आप कहेंगे भाई सामने दर्द हो गया, ये तो हर थोड़ी देर बाद ट्रेन गुजरती है। जब बाद लोगों का घर एयरपोर्ट के करीब होता है जहाज ऊपर से गुजरता है वो डिस्टर्ब होते हैं शुरू शुरू में, थोड़ा अरसा गुजरता है वो यूज टू हो जाते हैं। अच्छा, आप बाथरूम जाते हैं थोड़ी देर स्मेल आती है, और जब वहां बैठे रहता कई लोग वहां अखबारें पढ़ते हैं, यूज टू जाते बैड स्मेल के। अच्छा, सिमिलरली आप अगर जाएं किसी गार्डन में तो शुरू शुरू में आपको फ्रेग्रेंस फील होगा, अच्छी स्मेल आ रही होगी, थोड़ी देर गुजारी आपने वहां पर फिर आप यूज टू हो गए। अच्छा, इसी तरह एक आदमी है पुअर लाइफ गुजार रहा था, ड्यू टू पॉवर्टी उसकी सफरिंग थी जिंदगी की, अब रिसोर्सेज के लिए उसने कहा अभी ट्रेवल करते हैं कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो तो वहां जाके रहेंगे। अब वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी पे आ गया, वहां उसको रिसोर्सेज मिल गए, उसकी नीड्स पूरी होने लग गई, वो वहां रहने लग गया। अब वो वहां रहने के बाद उसका यूज्ड हो जाता है, उसको फिर फील नहीं होता कि भाई मुझे कोई स्पेशल फेवर्स मिल रही हैं। अच्छा, आप बताएं हमें कितनी दफा फील होता है कि जो एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस है यहाँ पर वो हमें कितना यानी एक बड़ा बेनिफिट है। अगर आप को स्मोक फील हो रहा हो, डस्ट फील हो रही हो, जो हम अपनी जिंदगी में यूज्ड टू थे, डस्टी एनवायरनमेंट थी, पोल्यूशन थी, एयर पोल्यूशन थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने कितनी दफा शुक्र पड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हवा बड़ी साफ साफ है। हालांकि वहां क्या होता था कि जब सुबह सवेरे उठते थे मस्जिद जाते थे तो एयर क्लीन मिलती थी, फिर उसके बाद दिन में ट्रैफिक चलती थी, पोल्यूशन हो जाती थी, तो फिर आदमी फील करता था यार सुबह की हवा कितनी अच्छी साफ सुथरी थी। या कभी किसी विलेज में चले गए वहां एयर मिली, अब बंदे को वहां पर फीलिंग होती थी, डिफरेंस फील होता था। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली कोई चीज मिलती है तो उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर एक आदमी कॉन्स्टेंटली नेकों की महफिल में भी रहता है तो उसको ग्रेजुअली वो जो एक डिफरेंस होता है ना उसकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, वो उसका यूज्ड टू हो जाता है। अल्लाह माफ करे, किसी वजह से अगर वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर दोबारा यूं समझे कि बैक टू आवर लैंड चला गया जहां से हम आए हैं, और फिर जब वहां रहेगा ना ओहो फिर वो ज्यादा फील करेगा, उसको ज्यादा तकलीफ होगी कि यार मैं वहां रहता था, वहां ये फायदे थे, अब मैं मुसीबत में आ गया हूं। अब वो क्योंकि एक टेस्ट कर चुका है। बिल्कुल इसी तरह जो बंदा ईमान ले आता है अल्लाह ताला पर, इस्लाम को कबूल कर लेता है, इसके बाद अगर वो इस्लाम से निकल जाता है ना इसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती, क्योंकि उसने एक बेस्ट चीज को टेस्ट किया हुआ है। जिसने टेस्ट ही नहीं किया हुआ उसकी तो बेचारे की सिचुएशन डिफरेंट है ना। तो बहरहाल यहां बात चल रही थी कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये औलिया अल्लाह वो हैं जो ईमान ले आए, और ईमान लाने के बाद इन्होंने मुझे डिसओबे करना खत्म कर दिया। इसी को ईमान लाना कहते हैं। भैया आपने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप उसको डिसओबे कैसे कर सकते हैं? तो ईमान लाने वालों की निशानी क्या है कि दे विल नॉट डिसओबे अल्लाह सुभान व तआला। अल्लाह ताला ने देखो यहां पर एक चीज ये नहीं बताई कि भाई ये वो लोग हैं यालमून कि ये अमल करने वाले लोग होंगे, याबुदून इबादत करने वाले लोग होंगे मेरे औलिया अल्लाह, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए अल्लाह ताला ने। कि ये बड़े नमाजी बंदे होंगे और हर वक्त रोजा रखेंगे, रातों को जागेंगे, इबादत करेंगे और लगे रहेंगे, दिन रात यही काम करेंगे। शैतान हमें बरगलाता है। शैतान पता किस तरफ ले जाता है, कहते बस ये जो ना ऐसा बंदा जो औलिया अल्लाह होगा ना, ये तो किसी से बात ही नहीं करता होगा, ना बीवी के पास जाता होगा, ना इसके बच्चे होंगे, ना कोई जॉब करता होगा, सारा दिन ये बस कुरान जीत की तिलावत करता होगा, रात को जो है ना ये इशा के बाद खड़ा होके नफरे पढ़ते पढ़ते फजर करता होगा और दिन में रोजा रख लेता होगा। वाह भाई वाह, ये मरवाने वाली बात है। ये शैतान का ऐसा धोखा है कि चार दिन करेगा उसके बाद भाग ही जाएगा, क्योंकि हम हमारे साथ अल्लाह ने हमारी जरूरियात लगाई हुई है। अल्लाह ने निशानी क्या बताई कि ये वो लोग होंगे जो गुनाहों से बच के जिंदगी गुजारते होंगे। आप उनकी जिंदगी को देखेंगे तो ये केयरफुल लोग होंगे, यत्तकून के अल्फाज। फिर आगे बताया दूसरी आयत के अंदर, इन औलियाहु इल्ल मुत्तकून। भाई औलिया अल्लाह कौन है, उनके सिवा कौन हो सकता है? इल्ल मुत्तकून, जो तकवा वाले लोग हैं। कैसे अजीब आयत का अंदाज है कि भाई अल्लाह के दोस्त कौन हो सकते हैं? वही जो भी केयरफुल रहने वाले, जो अल्लाह को डिसोबे नहीं करते, नाफरमानियां नहीं करते। हमारी सोसाइटी का आज जो बड़ी ट्रेजेडी है वो यही ट्रेजेडी है। हमारे अंदर जो चेंज आई है जिसकी वजह से पिछली कौमों को डिस्ट्रॉय किया गया है, वो क्या है कि बद परहेजी शुरू कर देते हैं। पहली कौमों ने यही कुछ किया और करते करते करते वो इस पॉइंट पर पहुंचे कि अल्लाह ताला ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। बस डिसोबे करना, बदपरहेजी मीन्स लाइक अगर आप प्रिकॉशन उन्होंने छोड़ दिए, केयरफुलनेस छोड़ दी उन्होंने, तो अब अगर वो केयरफुल नहीं रहे, जैसे आज हमारे लोग हैं, आज हमारे अंदर क्या चेंज आई है? अगर हमने कहे भाई देखो अल्लाह का हुक्म है, ये जो है आप फॉर एग्जाम्पल घर में टीवी ना रखे चले, इसकी वजह से आप और कुछ नहीं तो कम से कम एक नामहरम को तो देख ही रहे ना। अच्छा, और अगर फर्ज किया किसी ने उसमें, हमारे लोग ज्यादातर इंडियन मूवियां देखते हैं, है ना, अच्छा इंडियन मूवी लगा दिए घर में लिविंग रूम के अंदर। अच्छा, अब आप अंदाजा करें कि लिविंग रूम में टीवी के ऊपर जो है मूवी चल रही है, उसको कौन कौन देख रहा है? ग्रैंडफादर भी देख रहा है, ग्रैंडसन भी देख रहा है, सन भी देख रहा है, डॉटर भी देख रही है, वाइफ भी देख रही है, एंड डॉटर इन लॉ भी देख रही है, पूरी फैमिली इकट्ठी बैठी होती है ना, ऑल एंजॉय। मर्द भी उस औरत के नाचने को एंजॉय कर रहा है, औरत भी उसके नाचने को एंजॉय कर रही है। आप इमेजिन करें, एक औरत है और घर के बड़े से लेके छोटा बच्चे तक एवरीवन इज गेटिंग ग्रेटिफिकेशन। अच्छा, अगर ये औरत टीवी से निकल के बाहर आ जाती है, घर के औरतें भी उसको एंजॉय करें, मर्द भी एंजॉय करें, आप इस फैमिली को क्या कहेंगे? ये फैमिली पीआईजी नहीं होगी फिर। अब इस फैमिली को क्या कहेंगे कि ये क्या फैमिली है? हम कहते हैं चलो इस औरत को निकालो, इनको दे दो, दे आर वेरी हैप्पी पीपल, इनको दे देते हैं। अब ये औरतें भी उसको लग जाए और मर्द भी उसको लग जाए। यानी आदमी, मैं बताऊं कि हम सोचते ही नहीं है, हम सोचते नहीं है, कर क्या रहे हैं हम बैठे हुए, इतने यूज्ड टू हो गए हैं इन गुनाहों के। तो ये जो चीज है ना, फरमाया कि यत्तकू, तकवा, अल्लाह के दोस्त वो होगा जो तकवे वाली जिंदगी गुजारेगा। उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, हदीस पाक में भी ये लफ्ज आया, कुरान मजीद में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इसका नाम है बचना, हिफाजत करना, परहेजगारी अख्तियार करना, केयरफुल लाइफ गुजारना। और जो है अरबिक में एक सेइंग है, अल विकायतु खैरु मिन अल इलाजी। विकाया जो है ये बाब इफ्तआल से बना, वाकिया यकी विकायतन, ये जो है तकवे का जो लफ्ज है उसकी गिरदान है, और इसका मतलब है कि जो केयरफुल लाइफ है वो ट्रीटमेंट से बेटर है। ट्रीटमेंट कहाँ होगी? अब इंसान ने बदपरहेजी की, बीमार हो गया ना, तो क्या होता है, बंदा बीमार हो जाता है, एक दिन जो है ना उसको इमरजेंसी रूम पहुंचा दिया जाता है। इमरजेंसी रूम पहुंच गया, उन्होंने क्या किया, वहां शॉर्ट हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आपको क्या हुआ, क्योंकि इमरजेंसी रूम है ना, शॉर्ट हिस्ट्री लेंगे, ओके ओके टेल मी व्हाट हैपेंड। और डॉक्टर्स के पास जो राइटिंग की जगह होती है इतनी सी बनी होती है, आप रियली जाकर उनके चार्ट को देखें ना, इससे ज्यादा जगह नहीं होती, यू कैन नॉट राइट डाउन मोर देन दैट उनके चार्ट के ऊपर। वो पूछेगा ओके व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओके ये प्रॉब्लम है, ये ओके दैट्स इट फिनिश। और उसके बाद उसने उसको चेक किया जल्दी जल्दी, उसने कहा जी इतनी देर में नर्स जो है ना वो ले आती है, जो है ना ड्रिप ले आती है, और दूसरे लोग आ जाते हैं ईकेजी करने वाले और दूसरे टेस्ट करने वाले, सारे भाग भाग के आ रहे थे। अभी इसने हिस्ट्री बमुश्किल पूरी की होती है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ओके एक तरफ से अभी वो पूछ भी रहा है कि भी ओके ओके टेल मी दिस दिस दिस, और वो उसने नाम उसको इंजेक्शन लगा दिया। ओके अभी डॉक्टर जो है ना थोड़ा सा पूछ रहा होता है, वो कहता है ओके गिव अनदर इंजेक्शन, ये इंजेक्शन दे दो, ये दे दो, ये दे दो, फलां दे दो। अब वो साथ साथ ट्रीटमेंट कर रहा होता है और साथ साथ उसकी शॉर्ट हिस्ट्री ले रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान की डेथ होती है ना, तो फरिश्ते आते हैं ना, वो आकर उसके साथ लंबी चौड़ी बात नहीं करते, वो आते हैं बंदे को पांव से लेके ऐसे स्मेल करते हैं, अच्छा इसका जो है ना फीट से ये फलां जगह जाता रहा है, हाथों से अच्छा अच्छा अच्छा ये स्मेल आ रही है, इसने ये बदपरहेजी की हुई है, अच्छा इसने फलां आंखों से ये किया, कान से ये किया, जुबान से ये किया, चलो जी इसका जो ना इतनी ट्रीटमेंट इसको दे दो, उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, कब्र में पहुंचा दिया। वहां लंबे चौड़ी बात नहीं होती, वहां वो क्या कहते हैं, मन रब का, तेरा रब कौन है, अच्छा भाई तेरा दीन कौन सा है, तेरा नबी कौन है, बस तीन सवाल पूछे, फिनिश फिनिश फिनिश, ओके इसको ड्रिप लगाओ। वो जरा वो वहां पर बड़ा सारा स्नेक होता है, वो लग जाता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इंजेक्ट करता है पॉइजन। अब ये ट्रीटमेंट हो रही है, अच्छा अब उसके बाद वो एक अर्जे तक ये इमरजेंसी रूम की ट्रीटमेंट, अच्छा अब उसके बाद क्या होगा, वो कहेंगे भाई ये इतना इलाज हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अब जो है ना इसकी थोड़ी डिटेल हिस्ट्री लेनी है, वो फिर भेज देते हैं दूसरे लोगों के पास। अब वो क्या करते हैं, वहां पर वो आ जाती है टीम, ओके क्या हुआ दोबारा से बताओ, पहले भी वो पढ़ लेते हैं, अच्छा हाँ ठीक है इसको ये प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा था थोड़ा सा इसको, और ये इधर रेफर्ड हो रहा था, फला फला इन्होंने इतनी ट्रीटमेंट दे दी है, अच्छा चलो टेल मी मोर इन डिटेल। अब वो जो डिटेल पूछेंगे ना उससे है ना, तो फरमाया कि ये यौम हिसाब है ना, इसमें इंसान मूव नहीं कर सकेगा जब तक चार बातों का जवाब नहीं दे देगा, जिंदगी कैसे गुजारी, पैसा किधर से कमाया है जी, और कहां पर खर्च किया, इलम हासिल किया उस पर अमल किया कि नहीं किया, जवानी कैसे गुजारी। आप देखो ये फैमिली हिस्ट्री और आप सोशल हिस्ट्री ये सारी लेते हैं ना, तो ये डिटेल हिस्ट्री हो गई उसकी। अब उस डिटेल हिस्ट्री करने के बाद फिर अगला काम वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है इसको जो ना आईसीयू में पहुंचाओ, है ना ये तो बहुत बीमार है। अब उसकी पूरी स्टोरी उसने पूछ ली, तो अब ये उसकी नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, वो कहेंगे भाई इसको आईसीयू में पहुंचाओ, कोई कहेंगे भाई ये तो ऑफ्थल्मोलॉजी का केस है इसको आई वाले यूनिट में भेज दो, कोई कहेंगे भाई ये ईएनटी का केस है, ओरल सर्जन चाहिए इसके लिए वहां पे भेज देंगे इसको, है ना आर्थोपेडिक का केस है आर्थोपेडिक में भेजेंगे। अब जैसे बंदे की बीमारी थी ना, अल्लाह ताला ने जहन्नम में वैसे एरियाज बनाए हुए हैं, अच्छा ये जिना करता था इसको स्पेशल इस यूनिट में दाखिल करो, यहां इसकी ट्रीटमेंट होगी, ये लोगों के दिलों को दुखाता था, तंग करता था, उन्होंने कहा जी इसको ऐसी जगह पे खड़ा कर दो और एक लेजर की तरह फायर निकलेगी और इसके हार्ट को बंद करेगी, ये लोगों को इसी तरह तंग करता था ना, अब इसको वापसी वैसे मिलेगी। अच्छा अब ये क्या है, ये अब उसकी डिटेल ट्रीटमेंट है, लंबा अरसा वहां पर रहेगा। हाकाबा के अल्फाज इस्तेमाल किए, हाकाबा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स को कहते हैं। ये नहीं है कि डिप करेंगे जहन्नम में निकाल के बाहर निकाल देंगे, नहीं, जिससे क्वेश्चन हुआ वो फंस गया। कई लोग कहते हैं वहां जाएंगे देख लेंगे, भाई वहां जाके नहीं देखेंगे, वहां जाके सफरिंग करेंगे, देखने वाली चीज कोई नहीं होगी वहां पर। जी आपकी टोपी है टोपी पहने, तो अब वहां हकबा रहेगा। वो हकब कहते हैं हजारों साल को, हकबा कहते हैं मैनी थाउजेंड्स ईयर्स को। तो ये लंबी ट्रीटमेंट है, जैसे यूनिट में दाखिल कर दिया अब ये वहां रहेगा और लंबा। उसके बाद अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे और इस बंदे को वहां से निकाल कर अब जन्नत में पहुंचा देंगे जब ये फुली ट्रीट हो जाएगा। आप देखो इस बात को समझे आप, अल विकायतु खैरुम मिनल इलाज। ये इलाज करवाने का तरीका है और दूसरा इलाज करवाने और इससे बेहतर क्या चीज है, प्रिकॉशंस, बीमार ना हो, है जी। और वो प्रिकॉशंस कहाँ करनी है, दुनिया में करनी है, और वो हैं जो जिनको मुत्तकी कहा जाता है, तकवे वाले लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रिकॉशंस का है, केयरफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि भाई इधर से जाऊंगा कोई मुझे मग कर लेगा, फला रोड से गुजरते हैं बड़ी लोनली होती है सम टाइम, हमें किसी ने बताया सिटी के अंदर बाज ऐसे वो ब्लॉक्स हैं कि वहां पर मग करने वाले खड़े होते हैं। आप अगर मैनहट्टन जाए ना, उनके पास अच्छा वो उन्होंने बताया कि गाड़ी में भी नहीं जाना वहां पर, अगर आप वहां ड्राइव करते हुए गुजर रहे हैं ना, स्टिल डेंजरस। आमतौर पर गाड़ी में बंदा इतना डेंजरस भी नहीं करता। तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछा कि भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं आप स्पीड से निकल जाते हैं और मग करने वाला क्या आके गाड़ी मारेगा क्या करेगा। वो बड़े चलाक लोग होते हैं। मैंने कहा मैं आप समझाएं क्या करते हैं, कहते हैं जी उनके पास एक वुड सी होती है और उस वुड के ऊपर नेल लगा होता है एंड उसके एंड पर पांच छह नेल लगे होते हैं स्पाइकी किस्म, कहते हैं जी वहां जो रोड है ना वो टर्न करती है, आपको वहां पर स्पीड कम करनी पड़ेगी, आप ऐसे टर्न नहीं कर सकते। इनका कोई लड़का वहां खड़ा होता है वो आहिस्ता से गाड़ी के नीचे वो वुड रखता है उसमें नेल्स लगे होते हैं, आपकी गाड़ी उसके ऊपर से गुजरी पंक्चर होगी ना, और उनको पता है कि इतने डिस्टेंस पे जब ये टर्न करेगा ना उस एरिया में वो बिल्कुल लोनली प्लेस है, तो वहां पर बंदे खड़े होते हैं और उनका एक्सपीरियंस होता है कि इतनी देर तक इसकी गाड़ी की पंक्चर हो चुका होगा, आपकी गाड़ी वहां जाकर रुकेगी और ये हेल्पर बन के आपके पास आ जाएंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड देन दे विल डू व्हाट दे वांट, अपना काम कर जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा जी इस ब्लॉक से गुजरना ही नहीं है। तो अब आप बताओ कि अगर कोई ये कहे कि भाई इधर शैतान खड़ा हुआ है तो मैंने इधर से गुजरना ही नहीं है, शैतान पकड़ लेगा, है? इसका नाम है तकवा, टू बी ऑन द सेफ साइड। इसकी एक और मिसाल समझ लें, किसी ने लाके बास्केट दे दी आपको, कहा जो 1000 बिस्किट्स हैं, है जी, आई जस्ट हर्ड दैट वन ऑफ देम इज पॉइजनस, आई डोंट नो विच वन, अब मुझे बताएं उस बास्केट में से कोई बिस्किट उठाएगा, वाई, टू बी ऑन द सेफ साइड, शायद वो एक बिस्किट, चांस कितना है, हालोवीन आती है ना, हालोवीन, हालोवीन में टन्स ऑफ कैंडी को गार्बेज किया जाता है, व्हाई, टू बी ऑन द सेफ साइड, क्या पता, हालांकि खुद खरीदते हैं उन्हीं स्टोरों से, है जी, और लाके दे रहे होते हैं, लेकिन बच्चे इतनी इतनी हालोवीन पे कैंडियां इकट्ठी कर लेते हैं, माँ बाप कहते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड प्लीज थ्रो दे, हालांकि बच्चे को कैंडी कितनी पसंद है, फिर वो क्या करते हैं, खुद कैंडी माँ बाप ने रखी होती है, कहते हैं टेक दिस and throw this. To be on the safe side. अब अगर कोई बंदा कहे टू बी ऑन द सेफ साइड, भाई ये खाना नहीं खाना, इसमें चांस है, गड़बड़ है, अब बंदा बहस करना शुरू कर दे, जी आपने तो बस ऐसे ही फतवा दे दिया, अभी ये क्या है, लाइफ डिफिकल्ट कर रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वन, क्या प्रॉब्लम है? वो कहे भाई ये रोड पे जो जा रही है ना, ये हमारी नहीं है, है ना, इनको मत देखना। तो जो यंग लड़के होते हैं ना, वो कहते हैं सो व्हाट, आई एम स्ट्रांग, क्या प्रॉब्लम है, जस्ट बाय लुकिंग क्या हो जाएगा, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। उन्हें कहते हैं कि भाई किसी क्लब वगैरह में नहीं जाना, डेंजरस है। वो कहते हैं कि भाई कई कॉलेज के लड़के होते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसी जगह पर, वो जी हम वहां जाएंगे, खड़े होंगे, हमें नहीं कुछ होता, आई एम स्ट्रांग, आई नो, मुझे कुछ नहीं होता। ये नहीं कहते टू बी ऑन द सेफ साइड, तुम जाओगे हो सकता है यू गोना डू समथिंग रॉन्ग, ऐसा नहीं सोचते। तो अब तकवा किसे कहेंगे, कि आपने ऐसी लाइफ गुजारनी है कि जो टू बी ऑन द सेफ साइड हो। जो बंदा इस तरह की जिंदगी गुजारते गुजारते गुजारते कोशिश करते करते करते इस दुनिया से जाता है, अल्लाह फरमाते हैं इतना तकवा अख्तियार करो जितना तुम कर सकते हो। इसमें वेरिएशन, किसी में बहुत केयरफुलनेस होती है, अल्लाह अकबर। मेरे पास एक बंदा हमारे मेडिकल ऑफिस में आता था, और वो अक्सर आता जब मैं बंद कर रहा होता था ऑफिस, हम रात 8 बजे तक काम करते हैं, डार्कनेस हो जाती थी, लास्ट पेशेंट हमेशा वही होता था। मैं उसे कहता था भाई आप जरा जल्दी आ जाया करें, मुझे आपकी वजह से डिले हो जाता है, मैंने भी घर जाना होता है। वो मुझे बस कहते जी जी अच्छा अच्छा अच्छा, तो आई विल ट्राई। कुछ ऐसा ऐसे करता रहा, मैं क्यूरियस हुआ, मैंने कहा मैं इसको एवरी टाइम कहता हूं कि आप जल्दी आ जाए करें, आप क्यों देर से आते हैं, व्हाई यू डूइंग लाइक दिस। तो जब मैंने एक दिन उसे कहा, मैंने कहा आपके जॉब आवर्स क्या है, कह लगे जी मेरे जॉब आवर्स तो रात के हैं, मैं तो रात को काम करता हूं। तो मैंने कहा आप मेरे पास जब आते हैं तो जॉब से पहले आते हैं, आपको जाने की जल्दी होती है, फिर इसका मतलब, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं जल्दी आते फिर, आई गेट मोर क्यूरियस, वी जस्ट कम कपल ऑफ आवर्स अर्लियर। तो पता है उसने मुझे क्या आंसर किया, कहने लगे डॉक्टर साहब प्रॉब्लम यह है कि दिन की रोशनी में एक तो औरतें बाहर ज्यादा होती हैं, और दूसरा है कि वो मेरा विजन ज्यादा हो जाता है, मुझे वो नजर आती हैं, तो मैं टू बी ऑन द सेफ साइड लास्ट पेशेंट बन के आता हूं कि आपका ऑफिस भी एम्प्टी होगा, लेडी वेडी का चक्कर होगा ही नहीं, और ना सड़कों पर लेडीज नजर आएंगी, मैं आऊंगा चुप करके, बस आपसे इलाज करवा के अपने चले जाऊंगा। अजीब तकवा ये, ऐसे लोग भी तो दुनिया में रह रहे हैं ना, जिन्होंने इतनी केयरफुल लाइफ गुजारी, हर आदमी नहीं कोई कर सकता ये चीज। इसलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम सब ये करना, तुमने ये कहा कि तुम जितना कर सकते हो, मेक योर ओन जजमेंट, इतना तुम करोगे अल्लाह ताला तुम्हें मुत्तकियों में लिख देगा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, जो तौबा करने वाले पाक रहने वाले अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों से प्यार करता है, अल्लाह मुहसिनीन से प्यार करता है, अल्लाह मुखलिसीन से प्यार करता है, अल्लाह सालेहीन से प्यार करता है। तुम अगर ऐसे बन जाओगे अल्लाह तुम्हें अपने औलिया अल्लाह में शामिल कर देगा। इस चीज की कमी है आजकल। आजकल हम मस्जिदों में भी जाते हैं, वहां पर भी मिक्स गैदरिंग कर देते हैं। अभी मैंने पिछला जुमा पढ़ा है, आप अंदाजा करें कि उस जुमे के अंदर उन्होंने पूरा क्राउड यूं बैठा हुआ और बिल्कुल सामने लेडीज को बिठाया हुआ, सेम हॉल में, पीछे लेडीज बैठी हुई है सारी, है जी, गैलरी में है, और इधर सारे मर्द बैठे हैं, और मर्दों की आखिरी साफ के फौरन बाद लेडीज। मस्जिद में जा रहे हैं, तकवा नहीं है, है जी, मस्जिद में जा रहे हैं, आंखों की हिफाजत नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, है जी, मस्जिद में जा रहे हैं और वहां शॉर्ट्स पहन के टीनेजर्स आपके सामने आके बैठ जाते हैं। जिसने यहां तक शॉर्ट पहनी हुई है, जब ये अत्तहियात में बैठेगा तो ये शॉर्ट कहां जाएगी? कहते हैं जी ये फतवा है, ये फतवा फिर कहां आएगा? यहां आएगा ना, सतरंगा हो गया ना। मस्जिद के दरवाजे पर किसी के पास जरूरत नहीं है कि वो इसको रोक दे, स्क्रीन करे, डोंट गो, दिस इज द हाउस ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, दिस इज अगेंस्ट तकवा। वहां पर वो यंग लड़का आएगा, बोलेगा कि दिस इज फतवा, और मस्जिद वाला क्या कहेगा? ओके एंटर। कोई बोलेगा उसको कहेगा यू आर टू हार्ड। तकवा किधर है? फतवा तो चल गया, तकवा किधर गया? ये हलाल खाना है, लिखा होता है हलाल खाना, हलाल खाना, हलाल खाना, कितनी दुकानें बनी हुई है। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें कि तूने ये हलाल खाना कहां से लिया, क्या किया, फला किया, आप खुद ही कहेंगे कि ये हलाल नहीं है। हलाल नहीं है। हमें याद है एक दफा हमें खाना ढूंढ रहे थे, हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे, ऐसे जा रहे थे, तो एक जगह एक रेस्टोरेंट में मजबूरन जाना पड़ गया, कभी क्या करें। और मेरी घर वालों से डिस्कशन भी चल रही थी कि भाई हलाल वलाल कोई नहीं होते, ये कई साल पुरानी बात, लेकिन भूख लगी हुई थी, मजबूरी थी, कुछ ऐसी खाना था। तो एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, आप यकीन जाने कि अभी उस रेस्टोरेंट वाले को हमने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ वहां गए काउंटर पे, जो ओनर था ना, तो उसको हमने कहा भी कोई खाने की कोई चीज है, तो उसने कहा कि जी आप इधर तशरीफ ले आए। मैं उधर चला गया, कहते हैं आपके खाने की यहां कोई चीज नहीं है, साफ उसने मुझे कहा। मैंने कहा आपने तो बाहर लिखा हुआ हलाल, कहते हैं बस लिखा हुआ, मजबूरी है, क्या करें। मैंने कहा भी हमारी भी एक मजबूरी है, हम इस वक्त बड़ी भूख में हैं और हमें फूड चाहिए। कहते कुछ टाइम लगेगा, मैं आपके सामने बर्तन साफ करूंगा, मैं इसमें जो है ना कुछ वेजिटेबल्स वगैरह बनाकर आपको दूंगा, आप बैठ सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप बैठ, मैं आपको आपके मुताबिक चीज बना के दूंगा। लो हम बैठ गए, उसने जनाब हमें पका कर खिलाया, ये लो ये तुम्हारे खाने की चीज, ये हम आपको दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह कैसे फायदा फरमाता है। तो बिल्कुल क्लियर बात है, ये नाम होता है हलाल। अगर आप उनसे पूछे ये हलाल क्या है, वो कहेंगे वल्लाह हलाल है। क्या मतलब वल्लाह हलाल है? कि हलाल जानवर है, जबिया नहीं है। आप कहें वल्लाह जबिया है, वो कहेगा कभी इधर उधर देखेगा, फिर वो आपको नहीं बता सकेगा। सामने सिख ने दुकान खोली होती है, वो कहता है कि ये हलाल लिखा होता है, उस पर आप लोग जाते हैं, मैं हैरान तो जैक्सन हाइट आप चले जाएं 74 स्ट्रीट पे, सिख खड़ा होता है, उसको जाके पूछते हैं कि हलाल है, वो कहते हैं या जी आओ जी अंदर आ जाओ, अंदर बिठा देता है, खिला देता है, ये लो खा लो। सिख की गवाही, हिंदू की गवाही, उससे पूछते हैं कि हलाल है, उसे लिखा भी होता है हाँ हलाल है। हिंदू सिख की गवाही लेकर अंदर चले जाते हैं, खा के आ जाते हैं। ये हमारे आज के दौर की ट्रेजेडी है, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी नेशन डिट्यूरेट करती चली जा रही है, और जब ये अपने पीक को पहुंच जाएगी और हर गुनाह करने लगेगी, अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर देंगे, अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिर्फ फकत उन लोगों को बचाएंगे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठ गए थे। बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है, ऐसे ही होता आया है। हम लोग तो इमिग्रेंट आए हुए हैं ना, आगे जो जनरेशन हम यहां छोड़ रहे हैं, कभी पता किया कि उनकी हालत क्या है? अभी हमने पिछले दिन एक फ्यूनरल किया, वो लेडी जो है, बाप जो है वो डॉक्टर है और मुसलमान, और उसका भाई जिसने हमें इत्तला दी वो नमाजी है, है जी, और इसकी डिसीज की जो बेटी है वो कह रही है कि भाई मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, आई डोंट हैव एनी रिलीजन कहती है, लेकिन आई बिलीव कि माई फादर विल बी हैप्पी इफ यू वॉश हिम एंड डू समथिंग। हमने कहा भाई अच्छा भाई आप इसको डू समथिंग तो करना है ना, तो हम चले गए वहां पर, हमने डू समथिंग कर दिया। तो अब वो कहती जी माई फादर वॉज वेरी सोशल एंड वेरी sober and he was get along with everybody. तो इसके बहुत सारे और दूसरे भी फ्रेंड हैं, है जी, कुछ उसके अपने भी फ्रेंड्स आए हुए थे, तो लिहाजा उसने प्रीस्ट भी बुला लिया, तुम भी आ जाओ, उसने भी आके कुछ ना कुछ नसीहत कर दी, है जी, तो भाई चलो भाई माई फादर विल बी हैप्पी। वो कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई जो बस मुसलमानों के साथ ही, उसने सबके साथ प्यार करता था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, सबसे मोहब्बत करनी चाहिए ना, सबके साथ इक्वल रहता था। लिहाजा प्रीस्ट भी आ गया, वो भी अपना काम कर गया, हमने भी कुछ वॉशिंग मशीन कर दी। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी अब वो मुसलमानों की प्योर जो सिमेट्री है ना उसमें ले जाने की जरूरत नहीं है, तो हम तो ले जाएंगे इधर हमारे घर के करीब जो सिमेट्री है ना वहां ले जाएंगे। उन्होंने वहां जाकर उसको दफन कर दिया। एक और हमें कॉल आई, वो कहने लगा कि भाई मैंने तो अपनी मदर को जलाना है, क्रीमेट करना है, बस आई डिसाइडेड। उसने अपनी मदर को क्रीमेट किया, ही जस्ट बर्न। इसी तरीके से अब हमारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो उसमें यही प्रॉब्लम होगा। आप बहुत से लोगों से बात करेंगे, वो कहेंगे भाई यार बहुत ज्यादा जो है ना ये मौलवी कट्टर बनने की जरूरत नहीं है, कितना आम स्लोगन है ये, टू मच फैनेटिक नहीं बनो, बट ठीक है डू सम एंड दैट्स इट, आम ट्रेजेडी है ये। इसी का नाम है कि इनमें तकवा खत्म हो गया है, ये जो डू सम है तो, और भाई आपने बैलेंस लाना है, दुनिया में रहना है, एवरीथिंग बी टूगेदर, ये इसी का नाम है कि हमने तकवा छोड़ दिया। वी आर बिलीवर लेकिन वी आर ना मुत्तकी। अल्लाह के दोस्त कब बनेंगे? तकवे को अख्तियार कर लेंगे। बस आज का यही सबक है कि भाई अल्लाह ताला हमें सचमुच मुत्तकी लोगों में शामिल कर दे। ये एफर्ट हमने करनी है, लोगों की परवाह ना करें। जब आप ऐसा लेक्चर देंगे ना तो थोड़े से बंदे आए होंगे, जब आप कहेंगे सारे ठीक है आप देखेंगे माशाल्लाह सब आएंगे। आप उनको चैलेंज ना करें उनके नफ्स को, फिर आप देखें कैसे क्राउड आता है। आप नफ्स को चैलेंज करें और उन्हें कहें जी आपने ठीक होना है, फिर आप देखेंगे गान। लेकिन एक वक्त आता है अल्हम्दुलिल्लाह यहां लोग ढूंढते फिर रहे हैं, सुकून हर एक को चाहिए, सीधा रास्ता हर कोई ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग तलबगार नहीं है, एक वक्त आएगा आप देखेंगे कि इतने सारे नेक लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको और कहीं जगह नहीं मिलती, फिर वो ऐसी जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए शुरू में मेहनत करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमने यहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया है, और इसी तरह गुल साहब की तरफ प्रोग्राम होता है और जगहों पर कर रहे होते हैं। तो आप लोग अच्छे लोगों को बताया करें, ये नहीं कि बस आप आए लेक्चर सुना और बस हैप्पी हैप्पी हुए और चले गए। अपनी ड्यूटी समझें, इसको स्प्रेड करें इस चीज को, ताकि और लोग भी आए, फायदा उठाएं, और रियली हम मिलजुल के एक दूसरे को हेल्प आउट करें। हमें अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, इसीलिए हम घर में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि औरतें भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, और ये बिल्कुल हमारी होम एनवायरनमेंट में हम बैठे बात कर रहे हैं। इसका फायदा इसीलिए है कि ये बिल्कुल आपकी जो है ना यूजुअल लाइफ के अंदर ये टॉक हो रही है, और उसके अंदर बैठकर हम ये लर्न कर रहे हैं। एक एक मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह उसके अपने फायदे हैं, लेकिन घरों में क्यों प्रोग्राम करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि बिल्कुल आप उसको अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर फील करें। और इसी तरह अगर आपके पास आप एग्जाम्पल है कि 50 to 100 फैमिलीज इस एरिया के अंदर अगर नेक फैमिलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, आप लोनली नहीं फील करेंगे, आपको डिफिकल्टीज फील नहीं होंगी, आपकी जो फैमिलीज हैं उनके पास एग्जाम्पल आ जाएगी, देखो फलां ब्रदर जो है ना उसकी फैमिली भी अच्छी है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, उसके बच्चे भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके बच्चे भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी, रियल कम्युनिटी मिल जाएगी। तो इसके लिए एफर्ट करनी है, ठीक है ना, सबने मिलके, ताकि हम अल्लाह करे हमें अल्लाह ताला चाहे सबको अलग तब्दील कर दे, लेकिन भाई हमारी नीड तो 50 फैमिली से भी पूरी हो जाती है ना, दुआ तो सबके लिए है, लेकिन आप ये देखें कि हमारे बच्चों के पास अगर एग्जाम्पल ही ना हो, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, करीबी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वो आके बैठ कर आपके अगेंस्ट बात कर देते हैं, अगेंस्ट रिलीजन बात कर देते हैं, वो तकवे को रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि वी नो नीड टू लिव सो डिफिकल्ट लाइफ, क्या ऐसा बनाया हुआ है। आपका अपना भाई आके आपको लेक्चर दे देगा कि भाई इज दैट टू मच, डोंट डू लाइक दिस। अब आदमी बताओ कहां जाए, क्या हम फिर छोड़ते चले जाएंगे इस तरीके से? तो अगर हम ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जो वाकई प्योर लाइफ गुजारना चाहते हैं और एक दूसरे के लिए हम सपोर्टिव बन जाएंगे, तो वी गोना सर्वाइव, आवर चिल्ड्रन गोना सर्वाइव, अदरवाइज हम सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें जो है सचमुच नेकी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।